Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 7, Verse Number 25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Padamahayam Dadati Swa Padantikam. Vande Aham Shri Guruhu Shri Yutta Pada Kamalam Shri Gurun Vaishavasya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sattvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitasya. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namostute Tapta Kanchanam Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Pri Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayvacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita Mata Ki Jai Ho. Chapter number 7, Bhagavad Gyan. Shloka number 25. कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति प्रौढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। शब्दात् नाहं न तु अहम् मन में प्रकाश प्रकट होता हूँ सर्वत्र सबों के लिए, तो कहाँ छुप जाता हूँ? योग माया यानी अंतरंग शक्ति से समावृत आच्छादित होता हूँ यानी छिप जाता हूँ या ढक जाता हूँ। मूढ़ो अयम, मूढ़ मना मूर्ख लोग, अयम यानी यह, ना भी जानाती, ना मना नहीं, अभी जानाती यानी समझ सकते हैं, लोक यानी ये सारे लोग, माम मुझको, ये मुझे ऐसे नहीं समझ सकते। कैसे? अजम अव्ययम, अजम मना अजन्मा को, अव्ययम मना अविनाशी को। अनुवाद, भगवान कहते हैं मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते? किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति बहुत थोड़े ही थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभाध्यक्ष चुने जाने पर विरोध किया था, तो भीष्म ने कृष्ण को कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में मानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। अपनी तरह मना जैसे वो साधारण लोग हैं, तो वो समझते हैं कि कृष्ण भी साधारण हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते थे। जब वो होते थे तो भी दूसरे लोग तो भगवान को साधारण राजा समझते थे, लेकिन जो भक्त होते थे वो भगवान को आनंद का आगार मानते थे। किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ अभक्तों के लिए, वे अपनी अंतरंग शक्ति से आच्छादित रहते थे। श्रीमद् भागवतम में 1.8.19 में कुंती महारानी ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। कुंती महारानी कहती हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 19। अत्यंत ही सुंदर कुंती की प्रार्थना में सेकंड श्लोक है, वे कहती हैं माया जवनिका चन्नम अज्ञादोक्षजम अव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़ दृश्या नटो नाट्य धरो यथा। कि माया जवनिका चन्नम अज्ञादोक्षजम अव्ययम्, क्योंकि आप योग माया के पर्दे से स्वयं को ढके हुए हो, तो फिर जो मूड है वो आपको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आप माया से आच्छन्न होते हो, तो अज्ञानी लोग आपको नहीं जानते। और कैसे लगता कैसे है, न लक्ष्य मूड दृश्य, जो मूड होते हैं जो सिर्फ देह को ही वास्तविकता जानते हैं, वो आपको नहीं समझ सकते। नटो नाट्य धरो यथा, जिस प्रकार जब कोई नाटक में वेश धारण करता है, जैसे कोई अगर कोई नाटक में कोई अलग वेश धारण करता है तो असली व्यक्ति कौन है तो वो नहीं पहचान सकते, है ना। तो उसी तरह से वास्तव में आप कृष्ण भगवान हो, लेकिन आप इस संसार में आते हो, लीला करते हो, तो वो जान नहीं पाते आपको। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ईशोपनिषद में मंत्र 15 में भी इस योग माया आवरण की पुष्टि हुई है। जिसमें भक्त प्रार्थना करता है, विरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावेणो सत्यधर्माय दृष्टये। अर्थात, हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य स्वरूप योग माया से आवृत है। ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंग शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चित आनंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंग शक्ति से आवृत है, जिसके फलस्वरूप अज्ञानी जन निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। श्रीमद् भागवतम में 10.14.7 में ब्रह्मा द्वारा की गई यह स्तुति है, हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंग शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं जान सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की पूर्णमाणु संरचना की का या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर लें, यानी कि जो साइंसदान है, जो फिलोसोफर है, वो भले ही छोटे छोटे एटम्स को के विषय में जान लें, सारे ग्रहों के विषय में जान लें, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। भगवान कृष्ण ना केवल अजन्मा है अपितु अव्यय भी हैं। वे सच्चित आनंद रूप हैं और उनकी शक्तियाँ अव्यय हैं। श्रील रूपाद की जय हो। मोकं कुरु तु वाचालम् पंखुं लंघयते किरम् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। यह अत्यंत ही सुंदर श्लोक है और इसमें भगवान श्रीमद् भगवद गीता में पहली बार अपनी योग माया के विषय में बताया है। वैसे तो दूसरे श्लोक में भी माया की बात आई है, लेकिन इस माया में और महामाया में और योग माया में जो अंतर है वो हम आज समझने का प्रयास करेंगे। इस श्लोक में भगवान ने कहा है, नाहं प्रकाशः सर्वस्य, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। मैं मूर्खों और अल्पज्ञों के सामने कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ। मूढ़ोऽयं न विजानाति, इसलिए वो नहीं जानते हैं क्या, मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। कौन सा परम भाव? ममाव्ययम्, क्षमा, माम अजम अव्ययम्, कि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ। तो भगवान ने यहाँ पर अपनी दो क्वालिटीज बताई हैं कि जो बेवकूफ है वो ये नहीं जान सकते कि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ। तो यदि वास्तविकता में देखा जाए तो हमारे अंदर भी ये दो क्वालिटीज तो हैं कि हम आत्मा हैं और आत्मा अजन्मा है, यानी उसकी मृत्यु कभी नहीं होती, और अविनाशी है, यानी ना जन्म लेती है और ना ही मृत्यु होती है। भगवान ने बताया श्रीमद् भगवद गीता 2nd नंबर चैप्टर में भगवान ने कहा, न जायते मृयते वा कदाचन, ना उसका कभी जन्म होता है और ना ही कभी उसकी मृत्यु होती है। इसलिए हमारी भी सेम क्वालिटीज हैं। अब कृष्ण क्योंकि परम पुरुष हैं, इसलिए वो कहते हैं कि नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता, मैं हर किसी के सामने प्रकट नहीं होता हूँ। कृष्ण है रिजर्व ऑफ राइट के वो खुद को किसी के सामने प्रकट करें या ना करें। तो भगवान कहते हैं कि वे सबके सामने प्रकट नहीं होते, इसके दो कारण बता रहे हैं भगवान। सबसे पहले तो कहते हैं कि मूढ़ोऽयं न विजानाति, जो मूड है वो तो मुझे समझते ही नहीं है, वो तो मुझे जानते ही नहीं है। यानी दो तरह से आच्छादित भगवान बता रहे, एक तो मूड मुझे जानते ही नहीं है, और मूड कौन से होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण अब तक बताते आ रहे हैं। 15 में बताया भगवान ने, नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यंते नराधमा, जो मूड होते हैं मेरी शरण में नहीं आते वो मूड होते हैं, वो उनके सामने प्रकट नहीं होता। 20 में बताया भगवान ने, कामस्तस्य हृतज्ञाना, यानी वो मूड हो जाते हैं, उनका ज्ञान हर लिया जाता है, इसलिए वो मूड होते तो मैं उनके सामने नहीं जाता हूँ, जो देवताओं के पास चले जाते हैं। और 23 में भगवान ने बताया कि अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्य अल्पमेदसा देवान देव यजो यान्ति, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो भी मूड होते हैं तो उनके सामने मैं आता नहीं हूँ। तो वो तो अपनी इच्छाओं के द्वारा वैसे ही उनकी बुद्धि हरण हो गई होती है, और दूसरा कारण इसलिए वो भगवान उनके सामने नजर नहीं आते हैं। एक तो वो हो गए जो कि मूड हैं, उनके सामने नजर नहीं आते, और दूसरा भगवान कहते हैं योग माया समावेता। योग माया मतलब मैं योग माया के द्वारा आच्छादित होता हूँ। मैं अब दो पर्दे हो गए ना, एक पर्दा जीव आत्मा ने अपने शरीर पे डाल रखा है, किसका, आसक्ति का, कामनाओं का, इच्छाओं का, और दूसरा पर्दा भगवान ने अपने ऊपर डाल रखा है योग माया का। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक नई नवेली दुल्हन हो और वो आती है मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन पता चला कि अभी तो भगवान का ना भोग का समय हो रहा है, इससे पर्दा बंद है। अब वो नई नवेली दुल्हन स्वयं घूंघट करके आई है, इतना बड़ा घूंघट है उसका, और दूसरा भगवान भी घूंघट में है, भगवान भी पर्दे में है, तो इस समय भगवान का दर्शन असंभव है, हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान भी पर्दे में। लेकिन थोड़े समय के बाद क्या होगा कि भगवान का भोग का समय समाप्त होगा और भगवान के पर्दे खुल जाएंगे, लेकिन अब वो तो लज्जा से अपने सिर अपने घूंघट को ऊपर नहीं कर सकती, क्योंकि उस वो नई नवीनी दुल्हन है और उसके हाथों में मेहंदी भी लगी हुई है आसक्ति की, और ये घूंघट कौन सा है, कामनाओं का, तो इसके कारण वो अपने घूंघट को हटा नहीं सक रही है ना। तो फिर जैसे जीव आत्मा सदैव कामनाओं से, उसके कामना जो है, इच्छाएं जो है, वो एक बहुत बड़ा पर्दा है भगवान की और जीव के बीच में, और दूसरा आसक्ति भौतिक वस्तुओं की, और वो उसके कारण ये पर्दा हटा भी नहीं सकता है। तो जीव आत्मा इंतजार, जैसे वो दुल्हन जो है वो इंतजार करती है कि कब मेरे स्वामी आएंगे तो वो मेरा घूंघट हटाएंगे, क्योंकि मेरे हाथों में तो मेहंदी लगी हुई है तो मैं उस घूंघट को हटा नहीं सकूंगी, और फिर तभी तो मैं भगवान का दर्शन भी नहीं कर सकूंगी। उसी तरह जीव आत्मा जिसके चेहरे पर इच्छाओं का घूंघट है और हाथों में आसक्ति की मेहंदी है, वो भी पर्दे को हटा नहीं सकता अपने घूंघट को, तो वो भी प्रतीक्षा करता है कि कब किसी सतगुरु के साथ मेरा संपर्क होगा, और वो सतगुरु आसक्ति की दीवार को हटाकर कामनाओं के इस घूंघट को खत्म करेंगे तो भगवान के साथ साक्षात्कार होगा। तो अभी क्योंकि हमारे और भगवान के सेंटर में, भगवान कहते एक तो मैं स्वयं को ढक लेता हूँ योग माया से, और दूसरा जीव आत्मा अपने आप को ढक लेते हैं कामनाओं से, तो दर्शन हो नहीं पाता। तो भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावर्ता। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये माया है क्या जिससे भगवान अपने को आच्छादित कर देते हैं। वास्तव में भक्तों ये माया भगवान की शक्ति है, योग माया। चाहे योग माया हो या महामाया हो, भगवान कृष्ण की अनेक शक्तियां हैं। शास्त्र कहता है पराश शक्ति विविदेव सूयते स्वभाविता, यानी कि कृष्ण की बेपना शक्तियां हैं, ज्ञान बल क्रिया, तीन शक्तियां बताते हैं यहाँ पर, जो महामाया जो योग माया के विभिन्न अंग हैं। कौन से, पराश शक्ति विविधाय वसूयते स्व स्वभाव विधत्ता ज्ञान बल क्रिया च, ज्ञान बल और क्रिया। अब देखो ये जो भगवान की माया है, जो भगवान की अंतरंग शक्ति है, उसके तीन पार्ट हैं। पहली जो शक्ति है वो है अंतरंग शक्ति, दूसरी शक्ति है तटस्थ शक्ति। अंतरंग शक्ति में अब जो तटस्थ शक्ति है वो जीव है, जीव आत्मा जो है वो तटस्थ शक्ति है, और जो दूसरी शक्ति है वो चित शक्ति है। चित शक्ति जो यहाँ पर योग माया शक्ति यानी डिवाइन एनर्जी जो भगवान ने बताई है, चित शक्ति भगवान की दिव्य शक्ति है, और इस चित शक्ति की भी तीन मुख्य शक्तियां हैं। मतलब श्रील रूप गोस्वामी बात बताते हैं कि चित शक्ति जो भगवान की अंतरंग शक्ति है उसके तीन पार्ट हैं, एक है संवित, दूसरा है संदिनी और तीसरा है आह्लादिनी। ठीक, चित शक्ति यानी भगवान की अंतरंग शक्ति के तीन पार्ट हैं, संवित, संदिनी और आह्लादिनी। जो आह्लादिनी शक्ति है वो कृष्ण को परम आनंद प्रदान करने वाली है, मनोरंजन देने वाली है। और यह आह्लादिनी शक्ति का भी बहुत बहुत विस्तार है। वास्तव में जो मूल ओरिजिनल स्वरूप आह्लादिनी शक्ति का है वो कौन है? श्रीमती राधा रानी, और उसके बाद भी वैकुंठ में लक्ष्मी, कैलाश में पार्वती, द्वारिका में रुक्मणी और अनेक अनेक भगवान की सखियां हैं, मंजरियां हैं, वल्लभाएं हैं, और इस भूतल पर दुर्गा देवी हैं। ये सब विस्तार है भगवान की चित्त शक्ति के पहले पार्ट आह्लादिनी शक्ति का। ठीक है, आह्लादिनी शक्ति जो है उसका विस्तार है ये सब कुछ। और दूसरा है संधिनी शक्ति। अब जो संधिनी शक्ति है वो संसार की समस्त वस्तुओं को अस्तित्व में लाती है, यानी कि बल प्रदान करती है हर एक वस्तु को, और इस सारे जगत को स्थित रखती है, जैसे बलराम जी। ये भगवान की संधिनी शक्ति। और संवित शक्ति क्या है? वो है ज्ञान, यानी कि जो भगवान इस भौतिक जगत में हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो भगवान की संवित शक्ति से प्राप्त होता है। ये सब भगवान की डिवाइन एनर्जी यानी योग माया है। अब भौतिक जगत में जो एनर्जी है भगवान की वो है महामाया, यानी ये जो बहिरंग शक्ति है ना भगवान की महामाया। इस संसार में जो कुछ भी शक्ति है भगवान की अंधकार में डालने वाली इल्यूजरी एनर्जी है। आध्यात्मिक जगत में क्या है? योग माया है। जीव कहाँ पर है? तटस्थ शक्ति। और भौतिक जगत में क्या है? महामाया है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है योग माया और महामाया में? महामाया जीव को भक्तों से दूर ले जाती है ना। महामाया क्या करती है? जीव को ऐसे ऐसे झांसे देती है, ऐसे ऐसे प्रलोभन देती है कि वो भगवान से दूर हो जाता है। और योग माया क्या करती है? कैसे भी करके भगवान के करीब लेकर आती है जीव आत्मा को। अब देखो महामाया को हमने पढ़ा 7.14 में, जिसमें भगवान ने कहा दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, कि भगवान ने कहा कि ये जो माया है ना इसको पार करना बहुत कठिन है। भगवान ने कहा कि भगवान कहते हैं कि मैं माया में नहीं हूँ, परंतु यदि कोई माया से पार करना चाहता है तो उसे मेरी शरण। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते, ये माया देवी मेरी है। और इसके अभी देखो इस श्लोक के दो पार्ट हैं, 7.14 के दो पार्ट हैं, कि भगवान ने कहा कि मेरा और माया का क्या संबंध है? दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये माया मेरी है और इसको पार करना बहुत कठिन है। और सेकंड पार्ट में भगवान ने कहा आपका और माया का क्या संबंध है? वैसे तो आप इसको पार नहीं कर सकोगे, लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते, जैसे कोई व्यक्ति ऐसे तर्क कर सकता है कि हम यदि कुछ अपराध करते हैं तो उसका कारण माया ही है जो कि हमें प्रलोभन देती है, और ये माया तो भगवान की है,
तो अपराध की जिम्मेदारी भी भगवान की हुई ना। भगवान ने ये माया बनाई क्यों है? जैसे भगवान ने इतने सारे काम वासना को उत्पन्न करने वाले सुंदर सुंदर शरीर बनाए, लोभ को उत्पन्न करने वाले सोना चांदी इत्यादि वस्तुएं बनाई, फिर अगर हमारे अंदर कुछ काम क्रोध लोभ मोह उत्पन्न हो गया तो जिम्मेदार भगवान है ना। अगर भगवान नहीं चाहते कि हम काम के वशीभूत हों तो ये दृश्य बनाने की जरूरत क्या थी? तो इसको हम एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे कि जब किसी व्यक्ति की परीक्षा होती है, एग्जामिनेशन जब होता है, तो पेपर में MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। MCQs में हमें क्या करना पड़ता है? अभी देखो, चार ऑप्शंस होते हैं, ABCD, चार ऑप्शंस होते हैं, इसमें से एक सही होता है और बाकी तीन रॉन्ग होते हैं। तो जब हम सही को चूज करेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, और अगर रॉन्ग को चूज करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। और इसमें तीन रॉन्ग होते हैं, एक सही होता है, यानी कि एक सही है। अगर संभावना को देखें तो बहुत बहुत पॉसिबल है कि कोई रॉन्ग को ही चूज करेगा, क्योंकि ज्यादा मात्रा तो रॉन्ग आंसर्स की है। तो 80% चांसेस हैं कि कोई गलत चुन सकता है। अब वो गलत चुनेगा तो टीचर को जाके बोल सकता है ना कि आपने ही तो वहां पर रॉन्ग लिखा था, आप रॉन्ग लिखते ही नहीं तो हम रॉन्ग सुनते भी नहीं, ये मेरी गलती नहीं है, ये आपकी गलती, आपको सही वाला लिखना चाहिए था। तो टीचर बोलेगी कि मैंने तुमको पढ़ाया था, मैंने तुमको सिखाया था, परंतु तुमने ठीक से सीखा नहीं। तो भले ही टीचर रॉन्ग ऑप्शन देती है, परंतु ये तो स्टूडेंट की जिम्मेदारी है ना कि वो सही वाले को ही चुने, वरना फेल हो जाएगा। तो भगवान ने ये माया क्यों बनाई है? ताकि वो देखना चाहते हैं कि हम शास्त्रों के आदेश के अनुसार सही निर्णय लेते हैं या नहीं। तो स्टूडेंट यदि रॉन्ग आंसर को चूज करता है तो जिम्मेदारी स्टूडेंट की हुई ना, तो वो फेल हो जाएगा, टीचर पर तो जिम्मेदारी नहीं होगी। उसी तरह यदि हम माया की जकड़न में कोई गलत निर्णय लेते हैं तो जिम्मेदारी हमारी होती है, भगवान की नहीं। लेकिन यहाँ पर ये बात भी सोचनी है कि टीचर कभी भी गलत नहीं चुनेगी, क्योंकि टीचर ने तो स्वयं सेट किया है। इसलिए भगवान कभी भी कोई गलत काम माया के असर में आके नहीं कर सकते। भगवान क्या कहते हैं? मम माया दुरत्यया। दुरत्यया है किसके लिए? आपके लिए है, मेरे लिए दुरत्यया नहीं है। इसीलिए यदि आपको उसे पार करना है तो क्या करना है? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंतिते, यदि मेरी शरण में आ जाओगे तो माया से परे हो सकोगे। तो इस श्लोक में माया दो बार आया है। पहली लाइन में भगवान कहते हैं कि दैवी ये शगुणमयी मम माया, कि माया जो है वो बहुत ही मुश्किल है, उसको पार करना बहुत ज्यादा कठिन है, यानी माया जीव से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और दूसरे सेंटेंस में भगवान क्या कहते हैं? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंतिते, माया जीव से बड़ी है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं माया से बहुत बड़ा हूँ, इसे माया को पार करना है तो मेरी शरण में आ जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान माया के अधीन नहीं है, हम माया के अधीन हैं, और हम माया के परे जा सकते हैं, कैसे? भगवान की शरण में जाकर। और आज के श्लोक में, श्लोक नंबर 25 में भगवान कहते हैं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं न अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। अभी इसमें भगवान क्या बताते हैं? पहली बात कि मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। क्यों नहीं होता हूँ? क्योंकि योग माया समावृता, योग माया से ढका हुआ हूँ इसलिए। और तीसरी बात भगवान बताते हैं, मूढ़ो यम ना भी जानाती, जो मूढ़ लोग होते हैं वो नहीं जान सकते। क्या नहीं जान सकते? कि लोको माम अजम अव्ययम, कि मैं अजम हूँ, अविनाशी हूँ, ये समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? मूढ़ो, मूढ़ है, मूढ़ा का लिटरल अर्थ क्या होता है? गधा। जिस व्यक्ति का शरीर मानो मानव का हो और बुद्धि गधे की हो, इसको बोलते हैं मूढ़ा। मानव शरीर की विशेषता क्या है? कि हम एक विशेष प्रोसेस से ज्ञान प्राप्त करें, और वो ज्ञान क्या है, वो प्रोसेस क्या है? शब्द प्रमाण। अब शास्त्र प्रमाण जो है वो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का परफेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है, परंतु अगर हम मानव शरीर में रहकर भी जानवरों की तरह प्रत्यक्ष और अनुमान से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो वास्तविक ज्ञान कभी भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। वास्तव में भक्तों, मानव बुद्धि साधारण तरीके से यानी प्रत्यक्ष और अनुमान तरीके से प्राप्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए शब्द प्रमाण से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो माया के आवरण से परे होता है, क्योंकि वो हमारी इन भौतिक इंद्रियों से नहीं बना होता है। यहाँ पर भगवान जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो है योग माया। भगवान कहते हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावेता, योग माया। यहाँ पर महामाया की बात नहीं है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि ढका हुआ कौन है। भगवान कहते हैं योग माया समावृता, अहम, मैं ढका हुआ। वो बोलते हैं कि मैं ढका हुआ हूँ, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समा। भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि जीव आत्मा ढकी हुई है, जीव आत्मा आवृत नहीं है, भगवान ढके हुए। भगवान ने किसको, भगवान को किसने ढाका? भगवान स्वेच्छा से ढके हुए। भगवान की इच्छा है कि वो प्रकट नहीं होना चाहते तो नहीं होते। तो यहाँ पर समझने की बात क्या है कि जो योग माया है, वास्तव में योग का मतलब क्या है, भगवान से मिलाना, भगवान से संबंध स्थापित करना, और महामाया यानी जीव को भगवान से जो दूर ले जाती है, विस्मरण करा देती है, ताकि हम खुद को भगवान समझकर भोग करने लगते हैं। अब योग माया भी विस्मृति कराती है। देखो, बात को समझने का प्रयास करो कि महामाया विस्मरण करा देती है। वो क्या विस्मरण करा देती है? भगवान को भूलकर जीव खुद को आनंदित करना चाहता है, भोग करना चाहता है, ये महामाया का प्रभाव है। और योग माया भी विस्मृति कराती है। वो किस तरह से विस्मृति कराती है? अब देखो, भगवान के दो पहलू हैं, गॉड्स ग्रेटनेस एंड गॉड्स स्वीटनेस, यानी भगवान की महिमा और भगवान की माधुर्य, भगवान का जो माधुर्य है वो। अब महामाया क्या करती है? दोनों की विस्मृति करा देती है, परंतु योग माया खाली भगवान की महिमा की विस्मृति करा देती है, ताकि भगवान की जो स्वीटनेस है, जो भगवान का माधुर्य है, वही याद रहता है। जैसे जब यशोदा मैया भगवान को मट्टी खाते हुए देखती है, तो यशोदा मैया कहती है, मुंह खोलो, दिखाओ तुमने मट्टी खाई है। कृष्णा बोलता, नहीं मैया, मैंने मट्टी नहीं खाई। तो बोला, मुंह खोलो नहीं तो पिटाई करूंगी। तो जब भगवान मुंह खोलते हैं तो मुंह में अनंत कोटि ब्रह्मांड यशोदा माई को दिखाई देते हैं, स्वयं यशोदा भी दिखाई देती है। लेकिन फिर यशोदा माई कहती है कि वो इस भगवान की महिमा को याद नहीं करना चाहती है। वो भगवान, वो समझती है कि नहीं, ये कृष्ण है, ये मेरा पुत्र है, ये तो मेरा छोटा सा लल्ला है, मैं इसका चुम्बन करूंगी, मैं इसको स्तनपान कराऊंगी, ये कोई भगवान भगवान नहीं है, पता नहीं कौन सा भूत प्रेत आ गया था जिसने ये सब किया था, कृष्ण तो केवल मेरा छोटा सा बच्चा है। ये जो ऐश्वर्य भाव को भुलाकर माधुर्य स्थापित करती है, वो योग माया है। समझ में आया? तो आध्यात्मिक दृष्टि में जो जितना ज्यादा महामाया से आवृत होता है, उतना ही ज्यादा मोह होता है। मतलब महामाया जितना जबरदस्त आक्रमण करती है, उतना ही ज्यादा मोह उत्पन्न होता है, परंतु जो जितना ज्यादा योग माया से आवृत होता है, वो उतना ही ज्यादा उच्च स्तर का भक्त है। यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न उत्पन्न होता है कि वो तो भगवान है, उनको योग माया में यानी अपनी दिव्य शक्ति में आच्छादित होने की आवश्यकता क्या है, अपने आप को ढकने की आवश्यकता क्या है? तो इसका उत्तर है कि अगर हर समय में भगवान को अपनी वास्तविकता का ज्ञान रहे कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे महान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, तो उनके और उनके भक्तों को भी सदा यदि ये ज्ञान रहे, तो समझो ऐसे है कि एक बहुत बड़ा शहंशाह है त्रिलोकी का और एक स्वीपर है, तो उनमें कोई प्रेम का संबंध नहीं हो सकता। प्रेम होता है बराबरी में, एक दूसरे का हृदय मिलना चाहिए। राजा में और स्वीपर में कोई प्रेम होना बहुत मुश्किल है। अभी राजा है तो उसके लिए खाली त्रिलोकी का राजा है, तो जिस जिस टाइप स्टेज का राजा होगा, उसी स्टेज की प्रिंसेस और क्वीन का होना भी चाहिए। तो आध्यात्मिक दृष्टि में जो जितना महामाया से आवृत होता है उतना ही ज्यादा मोह है, और जो जितना ही ज्यादा योग माया से आवृत होता है उतने ही ज्यादा उच्च स्तर का भक्त है। ललित माधव में गोस्वामी पाद लिखते हैं कि भगवान की द्वारिका लीला और ब्रज लीला में बहुत अंतर है। अब जो वृंदावन की लीला है उसमें बहुत बहुत माधुर्य दिखता है, माधुर्य बहुत अधिक है। द्वारिका में माधुर्य नहीं है ज्यादा, द्वारिका में महिमा है। वृंदावन में जो भगवान की आराधनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है वो द्वारिका में रुक्मणी महारानी नहीं है, वो द्वारिका में सत्य मामा है। और जो वृंदावन में चंद्रावली है वो द्वारिका में रुक्मणी है। क्योंकि इसको कैसे समझ सकते हैं कि देखो रुक्मणी महारानी जो है वो सदैव उनको ये ध्यान रहता है कि भगवान इस संसार के स्वामी हैं, और क्योंकि मैं आदर्श पत्नी हूँ तो मुझे उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। और उनको हमेशा एक तरह का भय भी होता है कि कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए, मुझे छोड़कर चले ना जाए। जैसे उज्जवल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान के प्रति दो प्रकार का भाव होता है। माधुर्य भाव में क्या होता है, माधुरी भाव में जो भगवान के साथ प्रेम का संबंध होता है ना, उसमें भी दो स्टेज होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक क्या होता है तदीयस्तु, दूसरा है मदीयस्तु। तदीयस्तु का क्या मतलब होता है, हे भगवान मैं आपका हूँ, मैं आपकी संपत्ति हूँ, आप जैसा चाहिए मेरे साथ करिए, मैं आपकी संपत्ति, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा मेरे साथ व्यवहार कीजिए। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम में बताते हैं, आश्लिष्य वापादरतम पिनष्टो मामदर्शनम मर्महताम करोतु। आप यदि मुझे हृदय से लगा लें या अपने पैरों से कुचल कर मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर लीजिए, आपको जैसा अच्छा लगता है मेरे साथ वैसा सुलूक कीजिए, तदीयस्तु मैं आपका हूँ, आपकी संपत्ति हूँ, आपको जैसा मेरे साथ करना है वैसा कीजिए। ये बहुत उच्च भाव है। परंतु इससे भी ऊपर का भाव क्या है जानते हो, मदीयस्तु कि आप मेरे हो। अब जो श्रीमती राधा रानी का भाव है वो मदीयस्तु कि आप मेरे हो। अब देखो एक होता है घी और दूसरा होता है मधु। अब इसमें एक भाव जो है वो घी के प्रकार का है, जैसे कि मैं आपका हूँ, वो इसको रूप गोस्वामी से बताते कि ये घी की तरह। अब देखो घी जो होता है वो उसको हम ऐसे खा नहीं सकते, उसमें कोई वस्तु को पकाएंगे फिर वो खाने योग्य होगा। लेकिन जो मधु होता है उसको हम ऐसे ही खा सकते हैं। उसी तरह से जो राधा रानी का प्रेम है वो मधुरस है, वो माधुर्य रस है। चंद्रावली का जो प्रेम है वो घृत रस है, घी का रस है। अब इसको समझने का प्रयास हम ऐसे करेंगे कि श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के चैप्टर नंबर 60 में रुक्मणी और कृष्ण का संवाद है, और कृष्ण कहते हैं हे रुक्मणी मैं तो एक साधारण सा ग्वाला हूँ, मेरे पास तो कोई संपत्ति भी नहीं है, मुझे तो रणछोड़ कहा जाता है, मेरी तो समाज में मान सम्मान भी नहीं है, सब लोग मुझे कोई चोर कहते हैं तो कोई रणछोड़ कहते हैं, तो आपके लिए तो कितने अच्छे अच्छे राजाओं के और महाराजाओं के रिश्ते हैं, और मैं तो वैसे भी अनासक्त हूँ, मेरी तो किसी में कोई रुचि भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे हूँ, तो मुझे लगता है कि आपने मुझे चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको तो किसी अच्छे, और देखो शिशुपाल ने तो बारात भी लेकर आया था, राजा बन के आया था, पर आपने फिर भी मुझे चुना। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप अभी भी चाहते हो तो आप जा सकती हो। ऐसे नहीं सोचना कि अभी मैं फंस गई हूँ उसके साथ शादी करके, आप ऐसे नहीं सोचना, मेरी तरफ से आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप जहाँ चाहो जा सकते हो। अभी इस समय जब प्रद्युम्न बच्चे हो गए थे, पौत्र हो गए थे, अभी कृष्ण रुक्मणी महारानी से इस तरह, अब क्योंकि रुक्मणी के साथ भगवान का गृहस्थ गृहस्थ का व्यवहार करते हैं, मतलब गृहस्थ की तरह बात करते हैं। जैसे गृहस्थ ही अक्सर बोलते हैं अपनी पत्नी के साथ ठिठोली करते हैं, तो भगवान भी इसी भाव से कर रहे थे। मगर इतना सुनने के बाद रुक्मणी महारानी बहुत बहुत डर जाती है और वो समझती है कि शायद मेरी बात से, मेरी किसी वजह से वो मुझसे बहुत रुष्ट हैं, शायद अभी वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे। और वो इतना ज्यादा डर जाती है, बेहोश हो जाती है, रोने लगती है कि मुझे कृष्ण तुम मुझे अपने से दूर करने का विचार कैसे कर सकते हो, मैं तो मर जाऊंगी आपके बगैर, मैं तो जिंदा रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकती, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आपके बगैर मैं जीऊं, आपने इसे सोचा भी कैसे और मुझे ऐसा कहा कैसे। ऐसा कहने के बाद रुक्मणी बेहोश हो जाती है। भगवान ने सोचा अरे मैं तो मस्करी कर रहा था और ये तो सच मान के बेहोश हो गई। फिर भगवान जल्दी से पानी वानी डाल के उसको वापस से शांत करते हैं। तो ये है भगवान का माधुर्य रस का तदीयस्तु भाव। अब इसके विपरीत हम सत्यभामा का भाव देखेंगे। सत्यभामा का भाव है माधुर्य रस का मदीयस्तु भाव। अब एक बार क्या हुआ, नारद मुनि द्वारिका में आए और एक पारिजात पुष्प लेकर आए। द्वारिकाधीश को कहा लीजिए द्वारिकाधीश, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो भगवान के सामने रुक्मणी महारानी विराजमान थी। भगवान ने रुक्मणी को ये पुष्प दे दिया। रुक्मणी महारानी बहुत प्रसन्न हुई। उसके बाद नारद मुनि ने भगवान को बताया कि एक नरकासुर नाम का दैत्य है, वो सबको बहुत परेशान कर रहा है, सारे राजाओं की कन्याओं की वो बेइज्जती कर रहा है, अदिति के कुंडल छीन लिए हैं और बहुत बहुत सारे देवताओं की बहुत सारी वस्तुएं छीन ली हैं। तो कृष्ण ने कहा कि आप चिंता मत करिए देवर्षि, मैं अवश्य युद्ध करूंगा और नरकासुर को का वध करूंगा। तब नारद मुनि सत्यभामा के पास गए। अब नारद मुनि क्या है, भगवान की माधुर्य लीलाओं को प्रकट करने की सबसे सर्वोच्च जो है ना कैरेक्टर जो निभाते हैं ना वो नारद मुनि। सत्य का मतलब होता है स्वभाव और भामा का मतलब होता है क्रोध। जिसका स्वभाव ही क्रोध वाला हो तो सत्यभामा जो है वास्तव में ये क्रोधी स्वभाव उनका ऐसे नहीं होता है जैसे हमारा कैसे होता है कि ध्यायते विषय अनपुंस संगस्ते शुपजायते संग, ऐसा नहीं है। ये उनका जो क्रोधी स्वभाव है भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। तो सत्यभामा के पास जाके नारद मुनि कहते हैं सत्यभामा जी विनाश हो गया, विनाश हो गया, विनाश हो गया। सत्यभामा ने पूछा क्यों, क्या हुआ? नारद मुनि ने कहा कृष्ण ने आपको त्याग दिया है, वो आपसे तनिक भी प्रेम नहीं करते। सत्यभामा ने सही बताओ देवर्षि बात क्या है। तब नारद मुनि ने बताया कि मैं पारिजात का पुष्प लेकर आया था, मैं तो आपके विषय में सोचकर आया था और आप यहाँ पर आराम कर रही हैं और भगवान का हृदय तो रुक्मणी ने जीत लिया है, भगवान ने वो पारिजात का पुष्प रुक्मणी को दे दिया, उसकी वास्तविक अधिकारिणी तो आप थी। जब सत्यभामा ने ऐसा सुना तो वो बेहोश हो गई कि मुझसे ज्यादा वो किसी और से प्रेम करती है। तभी उनकी जो सखी है बानोमती उनको पानी वानी डाल के उनको वापस से होश में लाया। तब सत्यभामा ने कहा कि देवर्षि आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी कृष्ण को अपने भवन में लेकर आऊंगी, जब वो मेरे साथ आएंगे तो वो मुझसे प्रेम करना शुरू कर देंगे। तब देवर्षि ने कहा नहीं नहीं वो आपके पास नहीं आएंगे। सत्यभामा ने कहा लेकिन क्यों? तब नारद मुनि ने कहा कि वो तो अभी युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं। सत्यभामा को बहुत क्रोध आया। तब कृष्ण क्योंकि जा रहे थे स्वर्ग में उनको नरकासुर वगैरह के साथ है ना युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो उसने सोचा कि मैं है ना सत्यभामा से भी विदा ले लेता हूँ। रुक्मणी से विदा लेने के बाद वो सत्यभामा के पास आए। अब सत्यभामा को देखा इतनी क्रोध में थी, तब भगवान ने सोचा जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, क्रोध में लग रही है बहुत। और साइड में देखा तो नारद मुनि भी खड़े थे। नारद मुनि को देख कर भगवान मुस्कुराए और समझ जाते हैं, लेकिन फिर सत्यभामा से कहते हैं कि आप इतनी नाराज क्यों हो? तब सत्यभामा ने कहा आप जानते हो कि मैं क्यों नाराज हूँ आपसे। तब कृष्ण बोलते नहीं मुझे नहीं खबर, मैंने ऐसा क्या कर दिया, फिर आप बताओ क्यों नाराज हो। तब सत्य मामा ने कहा कि आपने पारिजात का पुष्प दीदी को क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, आप मुझसे तनिक भी प्रेम नहीं करते। तब कृष्ण ने कहा, अरे इतनी छोटी सी बात, अब कृष्ण इतने बुद्धिमान है, इतने चालाक है, तो वो बात को कैसे किसी को समझाते हैं, इस उनका कोई मुकाबला नहीं। तो कृष्णा कहने लगे, अरे वो फूल, पहले मैंने सोचा था कि वो फूल मैं आपको ही दूं, मैं आपके लिए मैंने नारद मुनि से लिया था, फिर मैंने सोचा कि आप तो मेरी कितनी प्रिय रानी हो, ये मामूली सा फूल मैं आपको दूं तो क्या अच्छा लगेगा, अभी एक छोटा सा मामूली सा फूल मैं अपनी प्रिय तरीन जो रानी है उसको मैं एक छोटा सा फूल दूं, इसीलिए तो मैं आपको प्रसन्न करने के लिए स्वर्ग जा रहा हूँ, पारिजात पुष्प का वृक्ष लाने के लिए, उसी के लिए तो मैं जा रहा था, अभी स्वर्ग जा रहा हूँ। तब ये जो कृष्ण है वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, बहुत दक्ष है, इस कृष्ण के बहुत सारे गुण है, उसने वाक चतुराई के बात करने में बहुत ज्यादा दक्ष है, और वो फौरन से मना देते हैं, कोई भी उनसे नाराज होता है तो भी। सत्य मामा आखिर सत्य मामा है, वो बोली आप स्वर्ग अकेले नहीं जाओगे, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अब तो पकड़े गए कृष्णा, फिर बोले नहीं नहीं मैं अभी डायरेक्ट से स्वर्ग में नहीं जा रहा हूँ, पहले तो मैं युद्ध करूंगा और वध करूंगा भूमासुर नरकासुर का, फिर स्वर्ग में जाऊंगा। अभी तो सत्यभामा बोली भले कोई बात नहीं मैं फिर भी आपके साथ जाऊँ। तो कृष्ण ने कहा नहीं रण में मैं आपको कैसे ले जाऊं अपने साथ। सत्यभामा ने कहा तो क्यों, क्या आप मेरा संरक्षण नहीं कर सकते। तभी कृष्ण ने कहा क्यों नहीं कर सकता, कर सकता हूँ मैं आपका संरक्षण, चलो ठीक है आप चलो मेरे साथ। तो सत्यभामा तैयार होने के लिए जाती है, बोलती है मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, और थोड़ी देर लगाती है। अभी नारद मुनि जो है वो और भी भगवान की लीला देखना चाहते, तब भगवान को कहते ये आप कैसे भक्तों के रक्षक हैं, आप अपने भक्तों की रक्षा इस तरह करते हैं, ये स्त्रियां तो तैयार होने में 6-6 महीने लगा देंगी, तो क्या आप 6 महीने तक उसी तरह से उन अबला नारियों को नरकासुर का जुल्म सहते हुए देख सकते हैं, आप इतना समय वेस्ट नहीं करो, चलो चलो जल्दी चलो वरना तो राक्षस और भी ज्यादा अत्याचार करेगा। तभी कृष्ण कहते नहीं नहीं नारद आप रुको, मैं अधिक सत्यभामा का क्रोध नहीं सहन कर सकूंगा, उसको आने दो वो अभी आ जाएगी। तो इतने में सत्यभामा आ जाती है और भगवान गरुड़ पर बैठकर पहले असुर को हरा देते हैं और बहुत बहुत पराक्रम दिखाते हैं सत्यभामा को अपना, और उसके बाद जितने भी उन्होंने देवताओं से जो जो वस्तुएं ली थी, अदिति के कुंडल और भी सब कुछ वो लेकर आते हैं, और फिर वो स्वर्ग में सबको देते हैं, और फिर बोलते हैं कि अब ना हम वापस चल रहे हैं। जब चल रहे होते थे तब सत्यभामा ने रास्ते में बोला, स्वामी आपने बोला मैं पारिजात वृक्ष लेकर दूंगा, आपने पारिजात तो लिया ही नहीं। तभी कृष्ण ने बोला अरे वो तो मैं भूल गया। फिर नारद मुनि को बोला नारद आप जाइए और इंद्र से पारिजात पुष्प लेकर पारिजात वृक्ष लेकर आइए। अभी नारद मुनि जो है वो भगवान के माधुर्य रस की लीलाओं को देखते हुए कभी तृप्त नहीं होते हैं, वो कुछ और करना चाहते हैं, वो जाते नारद मुनि और पारिजात पुष्प वृक्ष नहीं लेते, डायरेक्ट से इंद्र जो कि सच्ची अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए होते हैं और जाके उनके सामने कहते हैं कृष्ण ने आपके लिए आदेश दिया है कि आप पारिजात वृक्ष मुझे दीजिए। तो वो अपनी पत्नी सत्यभामा को वो भेंट करेंगे। अब कोई भी पति जो होता है वो अपनी पत्नी के सामने किसी का आदेश सुनना स्वीकार नहीं करता ना, उसको नहीं अच्छा लगता कि उसकी पत्नी के सामने कोई आके उसे आदेश दे। तो सच्ची देवी जो है उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था कि नारद मुनि इस तरह से कह रहे हैं कि कृष्ण आपको आदेश दे रहे हैं। तो सच्ची देवी ने कहा कि देवर्षि आपको पता नहीं है कि ये सब जितने भी नंदन कानन के वृक्ष हैं और उनके जितने पुष्प हैं ये देवताओं के लिए हैं, पृथ्वी पर रहने वाले साधारण मानवों के लिए नहीं है। तो फिर नारद मुनि ने कहा हाँ देवराज तो मैं जाके बोल दूं कृष्ण को कि ये साधारण मानवों के लिए नहीं है। तब इंद्र ने कहा हाँ हाँ जाके बोल दीजिए। तभी नारद मुनि जाके कृष्ण और सत्यभामा खड़े, सत्यभामा को बोलते हैं कि सच्ची माता ने तो आपका अपमान कर दिया। सच्ची देवी ने कहा कि ये जो पारिजात के वृक्ष हैं, वो जो नंदन कानन के जितने भी वृक्ष हैं, वो स्वर्ग के महान व्यक्तियों के लिए हैं, पृथ्वी के तुच्छ प्राणियों के लिए नहीं है। सत्य मामा तो वैसे ही क्रोध का स्वरूप। सत्य मामा ने भगवान को कहा कि इंद्र और उनकी पत्नी ने आपको तुच्छ प्राणी कहा है। तब कृष्ण ने कहा अभी तो इंद्र को पाठ पढ़ाना पड़ेगा। तब कृष्ण सत्य मामा को देखकर इंद्रपुरी में जाते हैं और वहां पर सत्य मामा जो है वो शची देवी को कहती हैं, तुमने मेरे पति का अपमान किया, उन्हें साधारण व्यक्ति कहा धरती पर रहने वाला, अब देखो तुम्हारे पति का अहंकार कैसे चूर होता है। तब शची देवी ने कहा मेरे पति के पास वज्र है और इस वज्र से बड़े बड़े असुरों का भी नाश कर देते, ये कृष्ण क्या है, साधारण मानव ही तो है। कभी अना युद्ध होता है और युद्ध में इंद्र अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं, सारे इंद्र के सारे जितने भी बाण होते हैं, जितने अस्त्र होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद वो वज्र निकालता है और कृष्ण वज्र को भी तोड़ देते हैं। और अब इंद्र क्या है, इंद्र का सबसे महान अस्त्र वज्र है। अब वो वज्र भी टूट जाता है तो इंद्र बेचारा क्या करे। अब कृष्ण अपना सबसे प्रमुख शस्त्र सुदर्शन चक्र निकालते हैं। अब इंद्र ने जब देखा सुदर्शन चक्र उनकी ओर आ रहा था, उनके पास कोई शस्त्र भी नहीं बता था, इंद्र डर के मारे भाग जाते हैं और बहुत बहुत भागते हैं, कभी इधर भागते कभी उधर भागते हैं, लेकिन भागते 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 आखिर किधर जाते हैं, फिर वो कृष्ण के चरणों में आकर गिर जाते हैं और कहते हैं नाथ मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। और बोलते एक पारिजात वृक्ष तो क्या, पूरा नंदन कानन जो ये बाग है वो सारा का सारा आपका है, आप ले जाइए, खाली मुझे क्षमा कर दीजिए, इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। अब इंद्र क्योंकि भगवान के भक्त हैं तो भगवान उन्हें क्षमा कर देते हैं और पारिजात का वृक्ष लेकर आते हैं द्वारिका में। तब सत्य मामा बोलती नहीं, इसको है ना मेरे रूम में भवन में नहीं लगाएंगे, इसको मेन गेट पर लगाएंगे ताकि सब देखेंगे, सारी रानियां देखेंगी कि देखो मेरे लिए भगवान पारिजात वृक्ष लेकर आए। तब रुक्मणी महारानी आती हैं क्योंकि भगवान विजयी होकर आते हैं उनकी आरती उतारने के लिए। तब सत्य मामा रुक्मणी महारानी को कह रही है देखो ये मेरे लिए भगवान कृष्ण जो है मेरे लिए इंद्र से पूरा वृक्ष लेकर आए, तुम्हारे लिए तो केवल एक फूल लेकर आए थे। तभी रुक्मणी महारानी बहुत ही मधुरता से उत्तर देती है, वे कहती हैं कि जिनके पास कृष्ण जैसे प्रेम करने वाले स्वामी की संपत्ति हो तो फूल हो या वृक्ष सब निगरानीय है, कोई किसी चीज की किसी वस्तु की वैल्यू नहीं है, किसी वस्तु का कोई वैल्यू नहीं, मूल्य नहीं है कृष्ण के सामने। तो वास्तव में ऐसी लीलाएं जो हैं वो योग माया के द्वारा होती हैं। अब दोनों ही सत्य मामा और रुक्मणी महारानी दोनों ही योग माया में आवृत थी, लेकिन योग माया में कोई व्यक्ति जितना ज्यादा आवृत होता है, जितना ज्यादा वो भगवान की महिमा को भूल जाता है और भगवान को अपना समझने लगता है, वो भगवान के माधुर्य को उतना अधिक अनुभव करता है और उतना ही अधिक भगवान की ओर भी करीब घनिष्ठ संबंध प्राप्त होता है। लेकिन भक्तों हमें यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझनी है, जो श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हम भगवान के माधुर्य रस को तभी समझ पाएंगे जब हम भगवान की महिमा को समझेंगे। मतलब फिलॉसफी फर्स्ट पास्ट टाइम्स लेटर, पहले कुरुक्षेत्र लीला उसके बाद रासलीला, मतलब पहले तत्व ज्ञान समझना चाहिए। वैसे तो भगवान की लीलाएं बहुत मधुर हैं, लेकिन मधुरता जो है भगवान की लीलाओं की केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। अभी ये भगवान की लीलाएं अगर कोई साधारण व्यक्ति सुनेगा तो उनको कैसा लगेगा, जैसे साधारण पति पत्नी की तरह भगवान जो है वो व्यवहार करते हैं। एक पत्नी बोलती है कि फूल क्यों लेकर आए, उसके लिए मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आए, तो उसके लिए जाकर वृक्ष। वास्तव में अगर तत्व ज्ञान नहीं है तो फिर ये लीलाएं केवल मनोरंजन बन जाएंगी। Without तत्व ज्ञान कृष्ण लीला इज अम्यूजिंग एंड विद तत्व ज्ञान कृष्ण लीला इज अमेजिंग। अब सत्य मामा जो है उनको फूल के कारण क्रोध नहीं आया था, वास्तव में ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए, शुद्ध भक्तों को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है कि वो है ना उनके लिए इतना बड़ा कांड करें, परंतु वो इस तरह का बर्ताव क्यों करते हैं, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, इसीलिए वो ऐसे कार्य करते हैं। तो ये सारी लीलाएं क्यों हो रही हैं, योग माया के द्वारा। अब इस भौतिक जगत में महामाया का प्रभाव बहुत ज्यादा है, तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो उससे दो चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, महामाया का प्रभाव कम हो जाता है। महामाया जो है वो भगवान तक पहुंचने की सबसे बड़ी रुकावट है, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, योग माया का प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और हम भगवान की मधुरता को, भगवान की स्वीटनेस को अनुभव करने लगते हैं। क्योंकि भगवान इस माया से परे हैं, और हमें भी भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के साथ अपना संबंध निर्माण करने के लिए योग माया से पार करना होगा, योग माया को पार करना होगा। तो भगवान क्या कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाते, जो मेरी शरण में आ जाएगा तो वो ही इस योग माया को पार करके मेरी महामाया के अंदर आ सकता है। तो भगवान की शरण कैसे लेनी है, भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, और हम इस तरह से धीरे 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 महामाया को पार करके योग माया से आवृत कृष्ण के बहुत बहुत निकट आ जाएंगे। और फिर कृष्ण का जो ऐश्वर्य है, महा जो कृष्ण का की महिमा है, वो योग माया में समाप्त हो जाती है। अब देखो इस संसार में हम अभी देखें तो क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं कि कृष्ण में बताया जाता है कि ही सन ऑफ गॉड, वो वास्तव में खुदा के बेटे हैं। लेकिन मुस्लिम क्या कहते हैं कि ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा है, है ना, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा है। तो आप कृष्ण के बेटे यानी भगवान, अब गॉड सब में होता है, ठीक है, गॉड जो है वो सबका होता है, वो सन ऑफ गॉड बताते हैं क्रिश्चियन लोग। लेकिन मुस्लिम क्या बोलते हैं कि ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है, तो आप उसको कैसे समझते हो कि उसका बेटा बनकर आए हो, तो ऐसा कैसे आप भगवान के ऊपर आरोप लगाते हो कि वो उसका कोई बेटा पैदा होता है। वास्तव में जो भगवान का अगर पुत्र, भगवान को यदि पुत्र उत्पन्न करना है तो उसके लिए शारीरिक संबंध की आवश्यकता नहीं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कृष्णन कहते हैं कि खुदा हमारा पिता है, हम बेटे हैं, और जो मुस्लिम है वो कहते नहीं पिता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पोता और पिता और पुत्र को छोड़ करके भगवान को अपना पुत्र बनाया जाता है। यशोदा मैया भगवान को एक छोटा सा पुत्र मानती हैं, और ये सब योग माया के कारण, यानी जब योग माया भगवान की अंतरंग शक्ति में जब हम प्रवेश करते हैं तो इतनी मधुरता होती है उसकी, और भगवान की महिमा जो है वो पूरी की पूरी समाप्त हो जाती है, केवल प्रेम का प्रदान रहता है, प्रेम का आदान प्रदान हो रहा होता है। तो हम सब महामंत्र के द्वारा योग माया में प्रवेश करके इसी दिव्य आनंद का आस्वादन कर सकते हैं, जिसका भगवान के शुद्ध भक्त करते हैं। इसलिए हमें सदैव भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए ताकि योग माया को पार करके महामाया को पार करके महामाया का प्रभाव समाप्त करके भगवान की योग माया अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति से पार जाके भगवान की अंतरंगा शक्ति में प्रवेश कर सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।